और सिद्ध का मतलब क्या है? अब वहां जाकर के मन ठहर गया, अब हमें चेष्टा नहीं करनी पड़ती, बिना किसी प्रयत्न के अब मन वहीं पर उसी में उसी गुण में नियत है, कायम है, तो उसको हम सिद्धि कहते हैं। तो ये जो लक्षण है यहां दिखाए भक्त के जीवन के लक्षण, तो ये सिद्ध के लक्षण, और ये साधक के लिए साधना, साधना का निर्देश। तो हमारे लिए ये क्या साधना का निर्देश? हम भी ऐसी होने की चेष्टा करें, सर्वभूतों के प्रति हम द्वेषहीन हो जाएं, यह साधना का, हम द्वेषहीन होने का प्रयास करें। का अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच सर्वभूतानां, यह सब में कॉमन है कि सबके प्रति मैत्री भाव हो, सबके प्रति करुणा हो। निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी, निर्मम हिंदी में निर्मम का मतलब तो आप जानते हैं, कठोर। यहां निर्मम का मतलब वह नहीं, संस्कृत में निर्मम का मतलब होता है मम भाव से, मेरापन से अलग हो जाना, जैसे मैं मेरा। तो निरहंकार माने अहंकार से अलग होना, मैंपन से अलग होना, निर्मम माने मेरेपन से अलग होना। तो भक्त ऐसा जो रहता है वह अपना नहीं मानता, भगवान का मानता है। अहंकार अपना पोषित नहीं करता, भगवान के अहंकार का पोषण करता है। ईश्वर करा रहे हैं, वे ही कर रहे हैं। किसी ने आकर के बड़ी प्रशंसा कर दी भक्त से, वाह आपने कितना बढ़िया यह कार्य किया है, तुरंत वह कहेगा कि यह तो प्रभु ने किया है, मैंने क्या किया है, मैं तो यंत्र हूं। यह कह रहा है यह बात की बात नहीं है, हम जब कहते हैं तभी बात की बात है, उसमें भी हमारा दिखावा और प्रदर्शन होता है, कह देते नहीं नहीं ये क्या है, हाँ हमने ये तो भगवान ने किया है, कहते तो हैं पर भीतर में उसका बोध नहीं है। जब सिद्ध पुरुष कहता है तो बोध है, वह उसका बोध है। इसको मैं कैसा मानता हूं, जैसे एक 14-15 साल की लड़की अचानक मेरे घर में आई और मेरी माँ ने कहा कि देख बेटा तू इसको अपनी बहन मानना। अब वह लड़की अनाथ थी, कहीं से मालूम नहीं कैसे आ गई, और माँ से किसी सहेली ने कहा होगा कि देखो रख लो, कामकाज भी करेगी, अब पता नहीं ठीक है, बाद में हम सब मिलकर के इसके हाथ पीले कर देंगे। अब मेरे घर में काम कर रही है 15 साल की जवान लड़की, और माँ ने मुझसे कहा कि देखो इसको तुम अपनी बहन मानना। मैं बहन मान रहा हूं, अब बहन मान करके चल रहा हूं, और धीरे धीरे समय पाकर के माँ ने पूछा उस लड़की से कि तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते थे, कैसे कैसे अनाथ हो गई, तो माता पिता मर गए। तो फिर उसने बताया नहीं मैं जब 2.5 साल की थी एक मेले में हम सब लोग गए थे और वहां पर मैं अपने माता पिता से अलग हो गई, अब तब से फिर तो मैं कितने स्थानों पर घूमी हूं। अब अचानक माँ चौंक जाती हैं, कहती अच्छा बेटी जरा देखूं तो सही तेरे पीठ को, देखूं पीठ को, देखती है कुछ निशान है, जन्म के निशान होते हैं, और अचानक उस लड़की को वह अपने आगोश में बांध लेती है। मेरी छोटी बहन 2.5 साल की उम्र में किसी मेले में छिन गई थी और माँ आज देख करके कहती यह वही लड़की है, अब मैं क्या उसे बहन मानूंगा, वह तो बहन है ही, यह बोध कैसे आ गया? अभी तक मेरी साधना चली थी बहन मानने की, मैं उसे बहन मानता था, पर अब मैं साधना करूंगा बहन मानने की, वह तो सहज सिद्ध। माँ ने कहा कि यह तेरी बहन है, मानने की आवश्यकता नहीं, यही वह है मुन्नी जो भूल गई थी, बिछुड़ गई थी हमसे, भगवान कितने दयालु हैं बेटे, देख मुन्नी आ गई, 13 साल के बाद घर आ गई, कितना हम आनंद मनाते हैं। तो यह जो सहज है, अब मैं उसे जो बहन मान रहा हूं यह मानना नहीं है, यह मानो मेरी नस नस में यह भाव विद्यमान है, यह बोध है, यह मेरी बहन है। तो ठीक, साधना जब हम करते हैं तो मान करके करते हैं, सिद्धि जब मिलती है तो बोध हो जाता है, ये दोनों का अंतर कितना महान है। ठीक ऐसा ही तो यहां पर कहा निर्ममो निरहंकार कि वह अहंकार से रहित होता है। भक्त माने अहंकार से रहित का मतलब भगवान का अहंकार ही अहंकार, हमारा अहंकार क्या अहंकार है। मम माने उसका अपना मेरापन नहीं, भगवान का मेरापन, भगवान का सब, यह भाव दिखाने का भाव नहीं, मानो बिल्कुल भीतर का भाव। एक बड़े विनोदी साधु थे, अभी भी हैं, बंगाली, अब बहुत विनोद करते थे, हंसाते हैं, लोटपोट करते हैं। एक कहा तुम हिंदुस्तानी लोग, बंगाली लोग हिंदी भाषियों हिंदुस्तानी कहते हैं, अरे तुम हिंदुस्तानी लोग बहुत विचित्र हैं। क्या विचित्र हैं? उनकी हिंदी भी बड़ी लटपटी, और बहुत प्यार की। तो बोलने लगे, अरे भाई क्या बताएं तुमको, तुम लोग सब ऐसे ही बोलने वाले। हुआ क्या महाराज? अरे क्या हो गया, एक भक्त हमको ले गया और उसके बाद हमको ले गया और कहता एक छोटा सा बच्चा ला करके हमारी गोद में दिया। तो हमने पूछा कि भाई ये किसका बच्चा है, क्योंकि वहां पर तीन लड़के थे गृह स्वामी के। हमने पूछा किसका बच्चा है, तो हाजी का महाराज आपका ही बच्चा है। हाँ, हमारा बच्चा है, हम तो ब्रह्मचारी, हमारा बच्चा कैसे होगा, तुम लोग बड़ा बहुत खतरनाक आदमी है, बोलता है हमारा बच्चा। हमने कहा हमारा बच्चा कैसे? नहीं महाराज आपका ही बच्चा है। अरे हमारा बच्चा कैसा होगा? मारे मतलब क्या है, हम बोलने में तो कह देते आपका भवन आपका बच्चा, ये सब कह देते हैं। ऐसा नहीं है वह कि बोलने में, या एक वो कहा करते थे तुम लोग बहुत खतरनाक आदमी ऐसे ही बोलते हो, आपका आपका बोलते हो, ये सब आपका पैसा है, मैं एक रुपया निकालूंगा तो मुझे मार लोगे, बोलोगे चोर हो। तो ये मतलब है, तो ये ऐसा नहीं, निर्ममो निरहंकार का मतलब सही कि मम माने ईश्वर का, ईश्वर मेरापन भी ईश्वर को और अहंकार भी मैंपन भी ईश्वर को। सम दुख सुख क्षमे, सम दुख सुख, ठीक है दुख और सुख में समान का मतलब कि दुख भी आता है, माने समान रहने का मतलब अपने मन को बुद्धि को असंतुलित नहीं होने देना। ठीक है दुख आता है, ठीक है प्रभु ने भेजा, सुख आता है प्रभु ने भेजा, माने दोनों में अपना कर्तृत्व नहीं देखना। सुख आया तो अपना कर्तृत्व नहीं, ईश्वर को ही देखा, और दुख में भी प्रभु ही मानो भेज रहे हैं। ठीक है प्रीतम तुम दुख भेजते हो, तुम सुख भेजते हो, दोनों के माध्यम से तुम पाठ पढ़ाते हो, ठीक है आओ दुख आओ तुम्हारा स्वागत है। मानो यह ऊंची अवस्था है, सिद्ध की अवस्था है, साधना अवस्था में हम चेष्टा करेंगे देखने की दुख आया तो हम कहेंगे प्रभु तुम्हारा मंगल में संकेत ही दिखाई देता है, समझ तो नहीं पा रहा हूं, चित्त तो अभी व्यथित है, समझा दो प्रभु इसके पीछे भी तुम्हारा कोई मंगलमय हस्त है। यह साधना का जीवन, तो सम दुख सुख क्षमी, और क्षमी कैसा, क्षमावान। तो वह भक्त कैसा क्षमावान, एक महात्मा नदी में स्नान करने के लिए उतरे थे, आप लोग कथा पढ़ते हैं, एक जीवित बिच्छू बहता जा रहा है और महात्मा ने करुणा करके हाथ से पसर से उसे फेंकने की चेष्टा की, बिच्छू ने डंक मार दिया, पसर छूट गया, बिच्छू गिर गया बहने लगा, दूसरी बार किया फिर बिच्छू ने डंक मारा, तीसरी बार किया फिर मारा, तीर पर एक व्यक्ति था, अरे कैसे अजीब हो महात्मा जी, बार बार ये डंक मारता है और आप बचाने की कोशिश करते हो, मरने दो दुष्ट को बहने दो। महात्मा जी ने कहा देखो यह है अबोध प्राणी, यह तो जानते हो ना समझ, परंतु फिर भी अपने डंक मारने के स्वभाव को जब नहीं छोड़ रहा है तो मैं विवेकी मनुष्य होकर के इसको बचाने के स्वभाव को छोड़ सकता हूं, मैं तो विवेकी मनुष्य हूं, मेरा स्वभाव है जो कष्ट में है उसको बचाना, अगर मर रहा हो कोई तो उसे बचाने की चेष्टा करना, तो मैं विवेकी और मनुष्य कहला करके अपना स्वभाव छोड़ दूं। और जब यह प्राणी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, यह क्षमा, क्षमा की पराकाष्ठा है, करुणा, करुणा में हम कभी कभी कहते हैं मुझे बहुत करुणा आ गई। तो मुझे तो दृष्टांत लिंकन का बहुत पसंद आता है, आप पढ़ते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में, कोई जरूरी बैठक थी, स्वयं गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, ड्राइवर तो था नहीं, अचानक देखा कहीं पर रपटे में एक दलदल में सुअर का बच्चा वहीं फंस गया है, चिल्ला रहा है मर ही जाता, एकदम गाड़ी रोकी, गए घुटने भर कीचड़ में उतरना पड़ा, निकाला बच्चे को कैसे भी, अब गंदे सारे कपड़े हो गए, वापस जाएं वहां पर व्हाइट हाउस में देर हो जाए बैठक में, वैसे ही चले गए, बैठक हो गई खत्म। बाद में लोगों ने पूछा क्या क्या बात है, उन्होंने कहा कुछ नहीं रास्ते में ऐसी घटना हो गई थी, लोगों ने बड़ी तारीफ की आप में कितनी करुणा है, आप कितने दयावान हैं। कहा कि मैं करुणावान दयावान नहीं हूं, देखो बात यह है कि वह जो सुअर का बच्चा चिल्ला रहा था मर जाता उसके कारण मुझे दुख हुआ, तो मैं अपने दुख को दूर करने के लिए वहां गया उसे बचाने के लिए, करुणा फरना नहीं है अपने दुख को, क्या अद्भुत दृष्टि है कि मुझे दुख हुआ अपने दुख को दूर करने के लिए मैंने यह किया है, कोई करुणा के कारण नहीं या दया के कारण नहीं, ऐसे करुणावान ये भक्त होते हैं। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, संतुष्ट सतत, सतत संतुष्ट है, ऐसा नहीं कि अभी संतुष्ट हो गया और थोड़ी देर में संतोष गायब हो गया, वह भक्त के लक्षण नहीं है, ये तो सामान्य संसारी व्यक्ति के लक्षण है कि अनुकूल मिला तो संतुष्ट, प्रतिकूल मिला तो असंतुष्ट,
ये तो ऐसा है कि जो सब में संतुष्ट, हर समय संतुष्ट, संतुष्ट सततम योगी जुड़ा हुआ है, युक्त है भगवान से, यतात्मा, और कैसा है, हरदम वह यत्न करता है, माने प्रयत्नशील है। सिद्ध होने के बाद भी उसकी साधना चलती है, साधना से विराम नहीं है। एक बार एक श्री रामकृष्ण ने पूछा तोतापुरी से, तोतापुरी जो नागा साधु, अद्वैत वेदांत के गुरु, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त पुरुष, कि आपको जब निर्विकल्प समाधि मिल गई तो आप इस प्रकार रोज ध्यान धारणा करते हैं क्यों है, इतनी क्यों साधना करते हैं। उन्होंने कहा देख मेरा यह पीतल का चिमटा देखता है, हाँ, पीतल का लोटा देखता है, हाँ, कैसे चमक रहा है, देख रहा है तो? कहा रोज, कैसे चमक रहा है? कहा कि जानता है मैं रोज इसे मांझता हूं, इसलिए इतना सुंदर चमक रहा है, अगर मांझना बंद कर दूं तो यह मैला पड़ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार भले ही मन समाधि को प्राप्त हो चुका हो, पर रोज ध्यान के द्वारा इसे मांझना चाहिए बेटा, इससे चमक बनी रहती है। यह है यतात्मा, कि ऐसा नहीं कि हो गया बस, सिद्ध हो गए, कोई जरूरी नहीं, हम कहीं पर कोई सावधानी रखते नहीं, और इसीलिए जो योगी हैं, जो सिद्ध हैं, कभी स्खलित हो जाते हैं, पैर फिसल जाता है, क्यों? क्योंकि सावधानी बना करके रखते नहीं कि मन मैला हो सकता है बिना अभ्यास के, हम कितने भी ऊपर क्यों न हो, पर यह अभ्यास हमारा बना रहना चाहिए। सतत मांझे यतात्मा, वह साधना करता है, मांझता है रोज, दृढ़ निश्चय, और कैसा है भक्त, दृढ़ निश्चय होता है, उसको कोई डिगा नहीं सकता, निश्चय उसका हल्का नहीं है, वह मानो टलने वाला निश्चय नहीं है। और मई अर्पित मनोबुद्धि ही, और उसने क्या कर दिया है, अपने मन और अपनी बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया है, वही बात जो हम पढ़ चुके हैं, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मेरा प्रिय है। और फिर 15वें श्लोक में कहते हैं यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः ही मुक्तो यह सच मे प्रियः। क्या मतलब, यस्मान्नो द्विजते लोको, जो दूसरों को उद्विग्न नहीं करता और जो दूसरों से उद्विग्न नहीं होता, हर्ष अमर्ष भय इत्यादि उद्वेग से जो मुक्त है, ऐसा जो व्यक्ति है, भक्त है, वह मेरा प्रिय है। अब यस्मान्नो द्विजते लोको, जो किसी भी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, यह बात तो समझ में आती है कि आप कुछ भी कहें, गाली भी दें, मैं उद्वेग को प्राप्त नहीं होता हूं, यह तो ठीक है, पर मुझसे कोई उद्वेग को प्राप्त न हो, इसका क्या मतलब? ठीक है मैं किसी को उद्वेग नहीं देता, परंतु यदि मेरी प्रशंसा होती है तो कोई उद्वेग को प्राप्त होता है कि नहीं? कोई प्रश्न कर सकता है कि आपने देखा होगा कि किसी की बड़ी प्रशंसा हो तो नाहक बैठे बैठे कुछ लोग उद्वेग को प्राप्त होते हैं, उनको उद्वेग होता है, ईर्ष्या की आग उनके भीतर में जलती है। अब इसको क्या कीजिएगा, यहां भगवान ने उसका उल्लेख नहीं किया है कि पूछा जाए कि प्रभु क्या करें, अब हम तो अपने धाम में बैठे हैं, ठीक है, पर हमारे कारण हमारा नाम जो हो रहा है उससे दूसरे लोग जल रहे हैं, तो यह आपके यह जो कहा है उसके अंदर आता है कि नहीं? भगवान कहते वह मेरे कथन में नहीं आता, वह नहीं, वह तो अपने कारण जल रहा है, अपनी ईर्ष्या के कारण जल रहा है, या तुम नहीं जला रहे हो, या तुम्हारी प्रतिभा नहीं जला रही है, वह तो जल रहा है खुद, उसके भीतर में दोष है, इसलिए वह नहीं, तुम किसी के उद्वेग के साक्षात कारण मत बनो, किसी को उद्विग्न न करो, यह तात्पर्य है। कथा आती है नाव में कुछ लोग बैठे थे, एक महात्मा भी बैठे थे, चले जा रहे थे, ईश्वर भजन उनका स्वभाव। अब जो बैठे थे नास्तिक, कहा कि देखो संड मुसंड फोकट खाने वाले समाज पर ये लोग सारे भार स्वरूप निंदा करें, अब वो तो बस भगवान का नाम लेते हुए बैठे हैं। एक उतना ही कहकर के नहीं रुका, दूसरे ने कहा कि देख ये चिक्कन मुंडी बढ़िया तबला है, आवाज बढ़िया निकलेगी, उसने तबला बजाना शुरू किया। ठीक है महात्मा बैठे हैं अपने, एक ने कहा कि नहीं वैसे नहीं, उसने अपनी चप्पलें निकाली और कहा देख इससे आवाज ज्यादा निकलेगा। ठीक है उसने बजानी शुरू की। अब भक्त तो ठीक है वह उद्विग्न नहीं हो रहा है, अब दूसरे उद्विग्न हो रहे हैं, क्या भक्त ने उद्विग्न किया? नहीं किया। और भक्त क्या उनसे उद्विग्न हुआ? नहीं हुआ, वह तो चुप बैठा है। पर आकाशवाणी हुई, भगवान को भक्त का अपमान सहा नहीं गया, बोल भक्त तू कहे तो अभी नौका उलट दूं और फिर तुझे तो मैं बचा लूं, ये सब मर जाएंगे। उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना के स्वर में कहा अरे महाराज, अगर उलटना ही चाहते हो तो इनकी खोपड़ी क्यों नहीं उलट देते, नौका क्यों उलटते हो, खोपड़ी उलट दोगे तो ठीक हो जाएंगे। यह भी भाव है कि खोपड़ी उलट दो तो सब ठीक अपने आप, आपको नौका उलटने की आवश्यकता नहीं। यह भाव, यह संत का भाव कठिन भाव है, पर इस भाव में भी कोई व्यक्ति आ सकता है कथा के माध्यम से। तो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, ये हर्ष अमर्ष माने दुख, हर्ष माने अनुकूल, अमर्ष माने प्रतिकूल, और भय भय की वृत्ति मालूम है। तो जहां पर भी ये वृत्तियां हैं वह ठीक ठीक भक्त नहीं है। हर्ष होता है प्रभु को केंद्रित करके, प्रभु तुम ही केंद्र में हो मेरे हर्ष के, आनंद के, अनुकूलता के। अमर्ष होता है तो प्रतिकूलता में भी भगवान को केंद्रित कर लें, उसके कारण उद्वेग नहीं हो पाता है। हर्ष अमर्ष के आते तो हैं पर हम अत्यंत उद्विग्न नहीं हो पाते हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। और भय, भय भी एक है, एक वृत्ति है मन की, तो उससे भी हमें छुटकारा मिल जाता है इस भय की वृत्ति से। अगर प्रभु ही केंद्र में है, अरे प्रभु तो वे तो हमारे सर्वनियंता, तीनों लोकों के नियंता, ऐसे प्रभु मेरे प्रियतम, मेरे इष्ट, मुझे क्या भय हो सकता है। तो वह जो उद्वेग आता है तो उद्वेग मुझे असंतुलित कर देता है। तो यहां पर यह कहा गया कि हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, इससे वह मुक्त रहता है। यह सच में प्रिय, ऐसा जो भक्त है वह मुझे प्रिय है। अब यह जो ऐसे जो होते हैं उद्वेग के कारण होते हैं, इन उद्वेगों पर भक्त या साधक बहुत जल्दी काबू पा लेता है। मुझे मालूम है, एक व्यक्ति की बात मालूम है। अब उनके पांच लड़के, पांच लड़कों में तीन तो हो गए सन्यासी इधर उधर, एक ही लड़का शादीशुदा, और उस लड़के की 39 साल की उम्र में मृत्यु हो गई हृदय के रोग से एकदम अचानक। तो मुझे जाने का मौका लगा, यह सब कहा तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी देखिए, मुझे ऐसा ख्याल तो नहीं आता कि मैंने जीवन में कोई पाप किया हो जानबूझ करके। अब मैं जानता था उनको, माने देखा था, जब से मैंने देखा पूजा पाठ में अत्यंत नियम पूर्वक पूजा पाठ, बिना उसके जल भी ग्रहण नहीं करेंगे पूजा किए, ऐसी निष्ठा पूजा में। वे रोने लगे छोटे बच्चे के समान। तीन तीन लड़के तो मैंने भगवान को दे दिए, साधु हो गए, और यह जो एक ही लड़के ने शादी की और यह परिवार पांच पांच छोटे बच्चों को छोड़कर के चला गया, कहां भगवान है। मुझे तो अब भगवान पर आस्था नहीं रही। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये पूजा फूजा सब छोड़ दूं। अब मैं क्या कह सकता था, कहा कि ठीक है, अब आपकी जैसी इच्छा हो, आपको ऐसा लगता हो कि पूजा में रुचि नहीं हो रही है, ठीक है आप जैसी इच्छा करें, अब ठीक है। अब वह तो शोक का आवेग, मैं दूसरे दिन मिलने के लिए गया और जाकर के मैंने देखा तो वे पूजा में बैठे थे। पूजा से आए फिर मुझसे कहा कि स्वामी जी, मैंने निश्चय किया था मैं पूजा नहीं करूंगा, परंतु आज सुबह मेरे भीतर से आवाज आई। उस आवाज ने कहा, तू किसके लिए पूजा करता है, अपने लिए पूजा करता है ना मेरे लिए पूजा करता है, मेरे लिए पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा भीतर से आवाज ने कहा कि भगवान के लिए पूजा करता है ना अपने लिए, भगवान के लिए पूजा करता हो तो कोई आवश्यकता नहीं, यदि तू अपने लिए पूजा आवश्यक मानता है तो कर। तो मैंने भी सोचा हाँ बात तो ठीक है, भगवान को मेरी पूजा की क्या आवश्यकता है, मुझे अपनी पूजा की आवश्यकता है। यह बोध जो ठीक भक्त और साधक होता है उसके भीतर में आत्मबोध ऐसे ही आता है, भीतर से ही, या आत्मा ही बोल देती है। तो हर्ष अमर्ष भय का उद्वेग इस प्रकार से दूर। और फिर 16वें श्लोक में कहा, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। अनपेक्ष, किसी से अपेक्षा नहीं रखता, केवल भगवान से ही अपेक्षा रखता है। शुचिर दक्ष, शुचि माने पवित्र, भीतर से पवित्र, बाहर से पवित्र, शरीर से पवित्र और भीतर जिसे कहेंगे मन से भी पवित्र, ये दोनों प्रकार की पवित्रता। दक्ष माने निपुण, कुशल, कुशल माने दक्षता। क्या है भक्त की दक्षता? भक्त की दक्षता यह है कि इस चाक चिक के भरे संसार में रह करके वह इस संसार को छोड़कर के भगवान के साथ अपने को युक्त कर सकता है, यह बड़ी कुशलता है। एषाम बुद्धिमताम बुद्धि ही मनीषा च मनीषिणाम, यही बुद्धिमानों की बुद्धि है और मनीषियों की मनीषा है। क्या है? यत सत्यम अमृते नेह मर्त्येन आपनोति माम अमृतम। भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि भागवत में यही बुद्धिमानों की बुद्धि है और मनीषियों की मनीषा है। क्या? कि इस अनृत संसार से, मिथ्या संसार से मुझ सत्य को पा लेता है, इस मर संसार से मुझ अमृत को पा लेता है, यही बुद्धिमानों की बुद्धि है, यही मनीषियों की मनीषा है, यही दक्षता है। यह संसार मिथ्या, पर इसके माध्यम से हम सत्य स्वरूप को पा लेते हैं। यह दक्षता जिसने जान ली वह भक्त है। उदासीन, उदासीन है, इंडिफरेंट है, ठीक है, इस संसार से वह विचलित नहीं होता है घटनाओं से। गतव्यथा, व्यथा नहीं है, मतलब क्या जीवन में दुख के ऐसे अवसर नहीं आते, आते हैं, व्यथित होता है। गतव्यथा का मतलब, परंतु यह जो व्यथा है अपनी लकीर नहीं खींच पाती, बस यही बात है। दुख के प्रसंग आते हैं, चले जाते हैं, वह मानता है कि ये सुख दुख के प्रसंग आएंगे चले जाएंगे, आगमा पाई है, और उनको वह सह लेता है। आगमा पाइनो अनित्यान तांस्तितिक्षस्व भारत, ये जो कहा है गीता में दूसरे अध्याय में, आने जाने वाले हैं सुख और दुख, इनकी तू तितिक्षा कर, इनको तू सह ले, यह कहा। सर्वारंभ परित्यागी, और सब संकल्प का त्याग कर देता है, भक्त संकल्प नहीं करता है। ठीक है प्रभु, ठीक है, माने यह सिद्ध भक्त का लक्षण, अपने जीवन में कोई संकल्प नहीं करता। श्री राम कृष्ण का जीवन पुनः उदाहरण, कोई संकल्प उन्होंने किया ही नहीं, बस कोई संकल्प नहीं, जैसा होता गया, माँ जैसा जुगाड़ करती गई बस उसी प्रकार घटता गया। तो हमारे लिए, साधक के लिए ठीक है, हमने योजना बनाई किसी कार्य की, करेंगे, पर यह जो जहां पर कहा कि संकल्प विकल्प जो बहुत होते हैं, इनको छोड़ने की चेष्टा, भगवान में इनको लीन करने की चेष्टा, जब हम अपना कर्तापन और भोक्तापन ईश्वर को देने की चेष्टा करते हैं, तो हम सर्वारंभ परित्यागी बन जाते हैं। अगले श्लोक में कहा, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय, जो हर्षित नहीं होता, द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता, इच्छा नहीं करता, शुभ और अशुभ का परित्याग करता है, ऐसा जो भक्तिमान है वह मुझे प्रिय है। इसको हम समझा ही चुके हैं, ये भिन्न भिन्न संदर्भों में इनको दोहराया गया है ताकि वे हम पर रेखापात कर सकें। इसलिए समा शत्रु च मित्रे च तथा माना अपमान यो हो शीतोष्ण सुख दुखेशु समह संग विवर्जिता, शत्रु और मित्र इनमें समभाव, यही मानो शत्रु और मित्र कहां देखेगा, जब प्रभु को ही देख रहा है उसके लिए शत्रु कहां, फिर मित्र कहां, माने एक समानता किस दृष्टि से, ईश्वर दृष्टि से, यह भाव भक्त के भीतर में रहता है। मान अपमान के प्रति भी समान, आप एक नाथ की घटना सुनते हैं पैठन में, वह मुल्ला वह कुल्ला करता जाता है अपने मुंह से, एक नाथ जी स्नान करके आ रहे हैं, कुल्ला करता है, पुनः स्नान के लिए गए, आए तो फिर से कुल्ला करता है, 100 बार ऐसा किया, 100 बार स्नान करके आए, तब मुल्ला नीचे उतर करके आया, चरणों पर गिर पड़ा, कहा कि मैंने सुना था कि आप सचमुच में संत हैं, मैं परीक्षा लेना चाहता था, बहुत अपराध हुआ, मैंने 100 बार आपके सिर पर कुल्ला किया। मनाते हुए उसी को समझाते हुए एकनाथ जी कहते हैं, भाई तुम अगर 100 बार कुल्ला नहीं करते तो 100 बार स्नान करने का पुण्य कहां मिलता, ये तो 100 बार स्नान करने का पुण्य तुमने दिला दिया। अभी अभी बहुत विचित्रता है, विलक्षणता है, मान और अपमान से भी परे, पर हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं कि ये केवल बाप की बात है, ये जीवन की घटनाएं। शीतोष्ण सुख दुखेशु समह संग विवर्जितः, और कहा कि शीत उष्ण सुख दुख द्वंद्वों में उसका संभाव है, बुद्धि संतुलित रहती है, और कैसा है, आसक्ति से विवर्जित है, आसक्ति नहीं है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी वही भाव, संतुष्टो येन केनचित वह समझा चुके हैं। अनिकेत स्थिरमति, अनिकेत है इसका मतलब कि वह घर में नहीं रहेगा, पर यह भाव नहीं है कि यह घर मेरा है, ठीक है रहता है, जब यही भाव नहीं कि यह शरीर मेरा है, जब उसको ही भगवान का मानता है तो फिर यह बाहरी घर तो ठीक है। अनिकेत यह भाव नहीं कि यह मेरा घर है, घर में अभिनिवेश नहीं है, उसको शरीर में ही अभिनिवेश नहीं, जिसको शरीर में अभिनिवेश नहीं उसको कहीं अभिनिवेश नहीं हो सकता। तो ऐसा अनिकेत स्थिरमति, ऐसा नहीं कि भक्त घर छोड़कर के पेड़ के नीचे रहेगा, ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए, इसका मतलब यही है कि उसको अभिनिवेश नहीं है, कहीं आसक्ति नहीं है। स्थिरमति, स्थिरमति है ऐसा जो भक्तिमान है, मैं प्रियो नरह। और अंतिम श्लोक क्या कहते हैं, ये तो धर्म अमृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। अर्जुन ये तू, परंतु ये तो सब मे प्रिय मे प्रिय मे प्रिय, परंतु जो लोग क्या करते हैं, धर्म अमृतमिदम इस धर्मामृत को यथोक्तम, जैसा मैंने ऊपर में बताया, पर्युपासते, पर्युपासते का भी मतलब हमने बताया कि हर समय, हर काल में, हर देश में, हर क्षण में जो इस प्रकार उसकी उपासना करते हैं, मानो इनका पालन करते हैं, इन गुणों का, इन लक्षणों को जीवन में उतारने की चेष्टा करते हैं। और कैसे, श्रद्धाधाना मत परमा, जो श्रद्धा से भरे हुए हैं और मुझे ही परम मानते हैं, ये जो भक्त हैं ये मुझे अतीव प्रिय हैं। अभी तक ये प्रिय थे, प्रिय थे, प्रिय हैं, प्रिय हैं, और ये मुझे अतीव प्रिय हैं। कौन अतीव प्रिय हैं? ये तो धर्म्यामृतमिदम, धर्म अमृत माने ये जो धर्म के लक्षण जीवन में, उसके द्वारा यह जो अमृत मिला, माने यह जो धर्म है किसका देने वाला है? अमृत का, अमृतत्व का। मानो यह धर्म हमारे जीवन में आए तो उसका फल क्या होगा? हम अमृत स्वरूप हो जाएंगे, हमें मृत्यु का भय ही नहीं सताएगा, यही अमृतत्व है। हम जो मुहुर्मुह डरते हैं, हम क्षण क्षण जो काल से भयभीत होते रहते हैं, यह काल का भय समाप्त हो जाएगा, यही इसी को अमरता कहते हैं। माने इसी जीवन में हमने प्रभु के चरणों को पा लिया, यह भक्ति की भाषा। इसी जीवन में हमने आत्मलाभ कर लिया, यह ज्ञान की भाषा। मानो हमने मृत्यु पर विजय पा ली। तो ये सब क्या है? ये लक्षण धर्म्य, धर्म्य का मतलब जो धर्म से प्राप्त होता हो, तो धर्म से प्राप्त होने वाले ये लक्षण हैं। और ये लक्षण कैसे हैं? ये अमृत स्वरूप हैं। माने हमें मानो यहाँ पर इस जीवन में आनंद में तो रखते ही हैं, और ये हमें अमरता प्रदान करते हैं, मृत्यु भय को जीतने में हमारी सहायता करते हैं, ऐसे ये हैं। तो ये तो धर्म्यामृतमिदम इदम यथोक्तम पर्युपासते, जैसा मैंने कहा है अर्जुन, उस प्रकार से जो इस धर्म्यामृत का, धर्म से जो निकलने वाला यह पीयूष है, इस पीयूष की उपासना करते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो वे ऐसे श्रद्धावान लोग, मेरे परायण लोग, मुझे ही परम मानने वाले लोग, ऐसे जो भक्त हैं, वे मुझे अतीव प्रिय हैं अर्जुन। इसलिए भगवान का संकेत क्या है कि तू देख, तूने जो प्रश्न किया था कि ये जो सगुण साकार के उपासक, इस पथ से जाने वाले भक्ति के, और दूसरे जो ज्ञान मार्ग, अक्षर अव्यक्त निराकार निर्गुण के उपासक, इन दोनों के जानने वालों में कौन बढ़िया जानकार है, श्रेष्ठ योगविद है, ऐसा जो तूने पूछा था अर्जुन, तो भगवान ने उसका डायरेक्ट उत्तर तो नहीं दिया, सीधा उत्तर नहीं दिया, यही कहा कैसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, तो तू यह भक्त होने की चेष्टा कर, यह कर्म कर, कर्म में कर्तापन का अभिमान छोड़, भोक्तापन का भाव छोड़, और तू मुझ में ही निविष्ट होगा, यानी मुझे ही प्राप्त होगा। यह भगवान का संदेश इस गीता के 12वें अध्याय के माध्यम से ध्वनित होता है। तो फिर से कह दें कि यह जो गीता का 12वां अध्याय है, भक्ति का अद्भुत संदेश हमें देता है। भले ही ये लक्षण आज हमें सुदूर पराहत मालूम पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी पहुंच से बहुत दूर है, ठीक है, पर साधना करते करते वह समय आएगा जब ये लक्षण हमारे जीवन के माध्यम से भी प्रकट होने लगते हैं। जब पहली बार मैं जूनागढ़ गया और देखा, मैंने पूछा कि सीढ़ियां कितनी हैं, कहा कि 7,500, 2,500 सीढ़ियां चढ़ो तो जैन मंदिर आएगा, फिर 2,500 सीढ़ियां चढ़ो तो अंबा मंदिर आएगा, फिर 2,500 सीढ़ियां तय करो तो फिर आएगा ऊपर में दत्तात्रेय का वहां जो चरण चिन्ह है। 7,500, तो मैं तो घबरा गया पहले ही, आप शरीर मेरा देखते ही हैं, और फिर इतनी सीढ़ियों का चढ़ना ऐसा वजन लेकर के, तो धीरे धीरे तो चढ़ा, मुश्किल से 100 सीढ़ियां चढ़ा होगा, मैं बैठ गया। मैंने कहा भाई नहीं जाते हम, बिल्कुल जाएंगे ही नहीं। एक यात्री ने कहा महाराज अभी से संकल्प क्यों करते नहीं जाने का, आप धीरे धीरे चलिए ना। अरे नहीं भाई, वो बहुत ऊंचा है, इतना हम चढ़ नहीं सकते, आप वो संकल्प छोड़ दीजिए, आप यही सोचिए कि आपको बस 2,500 सीढ़ियां तय करनी है, बस वहीं जाना है, आप इतना ऊपर क्यों देखते हैं, आप चलिए। तो धीरे धीरे मालूम नहीं कहां से वो भक्त आ गया, अनजान अपरिचित। मैंने कहा भैया तू मेरे पीछे लगा है और तू अपना समय जाया कर रहा है, तू चल ना आगे। कहा नहीं, मैं तो आपको लेकर के ही जाऊंगा। अरे मैंने कहा ये बड़ी आफत है, मैं बैठा हूं आनंद से। कहा नहीं महाराज, धीरे धीरे चलो, ऊपर की ओर मत देखो, बस नीचे ही देखते चलो। और सचमुच में नीचे ही देखते देखते चल करके 2,500 सीढ़ियां तो पहुंचा ही, और उसके बाद ठीक है, थक गया था, आधे घंटे विश्राम किया, और फिर उसके बाद कहा भक्त ने जाने की इच्छा है, मैंने कहा तू चलना भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा है, नहीं महाराज मुझे तो भगवान ने भेज ही दिया आपके साथ, ऐसा आप चलिए तो सत्संग तो होगा। मैंने कहा सत्संग यहाँ तो दम फूल रहा है, सांस फूल रही है, पर तुम सत्संग की बात करते हो। फिर चले थोड़ा सा, गए अंबा मंदिर तक। अंबे मंदिर तक जाने के बाद कुछ नीचे सीढ़ियां जाती फिर ऊपर, कहा चलो अब इतनी दूर आए तो चलेंगे, चले तो गए। आखिर पहले क्या लगा, लगा कह रहे बाबा हमारे लिए नहीं है, हम जा ही नहीं सकते। और अंत में क्या होगा कि 7,500 सीढ़ियां जाना, 7,500 सीढ़ियां आना, यह तय तो कर लिया। कैसे किया, ऊपर की ओर मत देखो महाराज, नीचे देखते रहो। और चलो ऊपर देखने से लगेगा बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत सीढ़ियां चढ़नी है। तो मतलब यह है साधना के क्षेत्र में भी हमें लगता है बहुत ऊंचा है, और बहुत ऊंचा होने से हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं, हम जहां खड़े हैं थोड़ा थोड़ा बस सांचा दे दिया, आदर्श बना करके दे दिया, और उस सांचे में आदर्श के अनुसार हम जितना अपने से बन पड़ता है यथाशक्ति धीरे धीरे प्रयत्न करें। यह भक्ति योग का कथन है, भगवान का कथन है, इससे यह सधेगा, यह सीधा पथ है। और जो ज्ञान का पथ है, ज्ञान का पथ बताएंगे 13वें अध्याय में, क्षेत्र क्षेत्र कितना कठिन है वह विचार करना। तो यहां पर यह कहा गया है यह भक्ति का पथ सीधा और सहज, तो यह हम अपने जीवन में उतार सकते हैं।